नमस्कार शिक्षार्थी और श्रोताओं, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में आप सभी का स्वागत है। शिक्षार्थी और श्रोताओं, आज जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के लर्नर्स के लिए हम जो कार्यक्रम लेकर आए हैं, उसका सब्जेक्ट रहेगा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। और जिस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज पार्ट 2। जी हाँ, इसका पहला पार्ट हम आपको सुना चुके हैं, आज इसका दूसरा पार्ट आपको सुनाने जा रहे हैं। और इस टॉपिक पर अधिक जानकारी दे रही हैं मिस मंजू चुरुंगू जी। तो आइए शिक्षार्थियों, मिलकर सुनते हैं कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज पार्ट 2।
नमस्कार लर्नर्स, आई वेलकम यू इन दिस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जो हम इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज की बात कर रहे थे, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, इंटरनेट आने के बाद जो काम करने का तरीका है वो सभी का बदल गया। मतलब 1-to-1 भी देखा जाए, छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े से बूढ़े इंसान का, हर किसी का तरीका काम का चेंज हो गया है। उसी वजह से लाइब्रेरी में जो काम करने का तरीका है वो भी डेफिनेटली बदल गया। लाइब्रेरीज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सर्विसेज। सर्विसेज मतलब सेवाएं प्रदान करना, तो वो सर्विसेज देना, उसका भी रूप बदल गया। क्योंकि पहले हम फिजिकली किताबें आपको देते थे, फिजिकली आपके क्वेश्चंस का आंसर करते थे, अब यही सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू होता है। तो हमने क्या क्या जाना है इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज के बारे में, हमने इसकी डेफिनेशन जानी, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, इनकी परिभाषा, इनका क्या महत्व है हमारी इस जिंदगी में, और इस बारे में हमने इसमें कितने तरह के विभिन्न प्रकार होते हैं, अलग अलग क्या हैं जो रिसोर्सेज, उन जैसे कि जिसमें कि ई बुक, ई जर्नल, ई डेटाबेस भी होते हैं, इसमें से हमने लाइब्रेरी में कैसे इन रिसोर्सेज को अक्वायर किया जाता है, लाइब्रेरी में इन्हें कैसे खरीदा जाता है, अक्वायर करना होता है, लाइब्रेरी में कैसे लाया जाता है। जैसे कि फिजिकल किताबें हम एक्विजिशन है उसका, हम कैसे इसे अक्वायर करते हैं, उसका एक अपना तरीका है। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज में हम किस तरह से करते हैं बुक्स को अक्वायर, उसका एक अपना अलग तरीका है। इसके लिए हमें ये भी रखना याद जरूरी होता है कि जो स्टाफ हमारे लिए नॉर्मल लाइब्रेरी में काम कर रहे होते हैं, क्या वो स्टाफ हमारा इस लाइब्रेरी में इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी को हैंडल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अगर नहीं करेगा, या तो हम स्टाफ की रिक्वायरमेंट्स को चेंज करेंगे, हम रिक्रूट करेंगे नया स्टाफ, या हम इन्हें ट्रेनिंग देंगे। जो अगर यही लोग हैं, इन्हीं लोगों की ट्रेनिंग होगी और तभी ये इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी को हैंडल कर सकते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ आपको नेगोशिएट भी करना पड़ता है पब्लिशर्स के पास साथ, क्योंकि वो अपने हिसाब से, उनका अपना फ़ायदा, आपका अपना फ़ायदा नुकसान देखना पड़ता है। क्योंकि आपको ये देखना है कि आप कितने बजट में कितने लोगों का फ़ायदा होना चाहिए, और बजट कैसा इन्वॉल्व है आपके लाइब्रेरी के हिसाब से, आप अपने हिसाब से पब्लिशर्स को ढूंढते हैं, उसी हिसाब से आप अपना सिलेक्शन करते हैं। फिर स्टाफ की ट्रेनिंग के साथ साथ हम लोग यूज़र्स को भी एजुकेट करना ज़रूरी है। अगर हमारे पास कोई नई चीज़ आई, कोई नई टेक्निक आई, नया टूल आया है, अगर हम यूज़र्स को नहीं इस बारे में बताएंगे, उन्हें नहीं समझाएंगे, उन्हें एजुकेट नहीं करेंगे, तो वो इस इन्फॉर्मेशन का कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते। आपके पास भले कितना भी कुछ हो, आपने कितना भी पैसा खर्च कर लिया हो, अगर आप अपने यूज़र को सही तरीके से वहां तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आप उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देंगे, तो आपके लिए ये एकदम बेकार हो जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम लोग जो हम बात करेंगे आगे, जैसे कि हम कैटेगरीज जो है, ई जर्नल्स है, ई बुक्स हैं, डेटाबेसिस हैं, इनके बारे में 1-to-1 हम आपको बताएंगे। ई जर्नल्स के बारे में हमने पहले भी थोड़ी बात की, हमने उसमें बताया आपको इसके क्या एडवांटेजेस हैं, कि आप कहीं भी कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, और आप इसको ढूंढना आपको बहुत आसान है, कीवर्ड्स डालेंगे बिना किसी अरेंजमेंट के, आपको रखने के बाद भी आपको आराम से अपने कीवर्ड से सर्च हो जाती है। और आपको ये भी पता है कि अगर कभी कभी कोई अपडेशन आती है किसी चीज़ में, और जल्दी से जल्दी वो अपडेशन किस में आ सकती है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही आ सकती है। फिजिकल बुक में लास्ट तक लाना, उसको प्रिंट करना और प्रिंट करके पब्लिश करके सब तक पहुंचाना, it takes a lot of time. So here what you will do, you will see it will be uploaded at the same time. Ekdam se hi aapke paas wo nayi se nayi information bhi upload ho jati hai, wo part of information ho jata hai aur aapki information jo hai latest ho jati hai. बाइंडिंग का कोई कंसर्न नहीं होता. आप देखेंगे जर्नल्स साल में हर जर्नल का अपना अपना पीरियोडिसिटी है, कोई मंथली वीकली या एनुअली है या जो भी है. इन सबको हम फिर रख के इन लोगों की इनकी बाइंडिंग करते हैं, इनकी एक्सेशनिंग होती है, ये भी बाद में यूज हो जाते हैं. जहाँ की हमें ई जर्नल्स के में ये वाला पार्ट हमारा बहुत अच्छा रहता है कि हमें ये बाइंडिंग और स्पेस का इशू खत्म हो जाता है फिजिकली. या हमें बैक जर्नल्स जो होते हैं, बैक इश्यूज को अगर देखना होता है, अगर हमने वो वाले जर्नल को इस साल भी हमने अप्रूव किया है, ले लिया है, परचेज किया है, तो आप सारे बैक इश्यूज को ले सकते हो, देख सकते हैं. पर डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपने इसको इस बार रिन्यू नहीं किया, किसी भी को कोई डाटाबेस है, जर्नल है, जो भी, अगर परपेचुअल एक्सेस भी, एक एक्सेस 14 ईयर्स तक की होता है, उसके बाद वो भी खत्म हो जाता है. तो अगर हम इन्हें रेन्यू नहीं करेंगे तो हमें एक्सेस खत्म हो जाता है. पुराने जर्नल्स का भी कोई जरूरी नहीं है हमें एक्सेस मिलेगा. इसके बाद हमने लाइब्रेरी कंसोर्शिया की बात की थी. कंसोर्शिया ऐसा एक टूल है, ये कह सकते हो आप उसे, कि उसमें अगर आप ये सोचेंगे कि मैं अपनी लाइब्रेरी के लिए ये भी लेना चाहता हूँ, वो भी लेना चाहता हूँ, आपके पास हमेशा फंड्स की प्रॉब्लम रहेगी. तो ये एक कॉमन फंड हो जाता है, कॉमन नेटवर्क सिस्टम बन जाता है, जिसमें आप लोग क्या करते हैं, कॉमनली पुल इन करते हैं रिसोर्सेज, और कोई ऑर्गेनाइजेशन इसमें ई जर्नल्स का सब्सक्रिप्शन लेकर के बहुत सारी लाइब्रेरीज को एक नेटवर्क के थ्रू इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जैसा बन जाता है. अगर एग्जांपल में आप देखोगे डेलनेट है, जिसके पास अभी ई जर्नल्स ई बुक्स भी हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास अपना खरीदा हुआ नहीं है, वो सारी लाइब्रेरीज के पास जो भी डाटा है उसका ही एक्सेस दे देते हैं, जिसमें हमें कि फिजिकल बुक्स का भी डेटाबेस मिल जाता है, शेयर होता है, जहां अगर हमारे पास कोई बुक नहीं है तो हम वहां से बोरो कर सकते हैं, कुछ टाइम पीरियड के लिए बोरो करके उसे यूज करके हम वापस कर सकते हैं. इसी तरह से हम यहां पर अगर हमें ई जर्नल, ई आर्टिकल, ई बुक कुछ भी चाहिए होगा तो हम उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो हमें भेज देते हैं. वैसे तो पेमेंट पे भी हो सकता है ये, अदरवाइज इफ यू आर मेंबर तो आपको मिल भी जाता है. तो इस तरह से हमें ये जो लाइब्रेरी कंसोर्शिया है, ये हमारे रिसोर्सेज का एक पूल बन जाता है, जहां की सभी लाइब्रेरीज का फायदा होता है. इसकी एक एग्जांपल हमने यहाँ पर दिखाई, delcon.government.in. तो ये गवर्नमेंट का है इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी कंसोर्शिया, जहां पर सारी इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज का एक पूल इन है, जहां पर यूजीसी ने भी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्शिया किया है, जहां पर यूजीसी अपने सारे कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को उसका एक्सेस दे देता है. ये तो था जर्नल्स के बारे में. अब हम बात करेंगे बुक्स के बारे में. बुक्स भी ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक बुक्स है जैसे आपके पास फिजिकल बुक है, एग्जैक्टली वैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल बुक भी होती है, जिसमें कि टेक्स्ट के अलावा इमेजेस भी होती हैं. आपको कभी कभी सिर्फ पढ़ने के लिए इनके लिए कंप्यूटर चाहिए, डिजिटल डिवाइस कोई सा भी चाहिए. इनका वैसा ही स्टैंडर्ड है जैसा आपकी प्रिंटेड बुक का है, सेम स्टैंडर्ड है. पर यहाँ पर आपको क्या होगा, अलग अलग फॉर्मेट्स में भी मिल जाती हैं, जिसको पढ़ने के लिए कभी कभी आप डाउनलोड करके रखें तो बाद में ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, अगर नेट नहीं भी है उस समय तो आप बाद में भी पढ़ सकते हैं. कभी कभी आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता तो आपको ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ता है. पर इसमें सबसे बड़ी चीज ये भी है, अगर आपने बुक में कोई ऑडियो डाला, वीडियो डाला, वो भी आप सुन सकते हैं, जो कि फिजिकल बुक्स में हम नहीं कर सकते हैं. एडवांटेजेस सेम ही है, वही कि हम इसको एनी टाइम एनी वेयर कर सकते हैं, कीवर्ड से सर्च कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो सुन सकते हैं, कोई डैमेज नहीं है, एलिमिनेशन का कोई चक्कर नहीं है, सिक्योरिटी का कोई कंसर्न नहीं है, रीडिंग का कोई कंसर्न नहीं है, टाइटल्स पुराने नहीं होते हैं, तो ये सारी या शिपिंग हैंडलिंग वगैरह का कोई इशू नहीं रहता है. ये हमारे बुक ई बुक्स का फायदा है प्रिंट बुक्स से. तो डिसएडवांटेज वही है कि हमें एग्रीमेंट करना पड़ता है, लाइसेंस चेक करने पड़ते हैं, नेगोशिएशंस करनी पड़ती है. हमेशा आपको एक पावर कनेक्शन रहना होगा, जहां से कि आप اگر آپ کے پاس نہیں الیکٹریسٹی کا کنیکشن تو آپ نہیں پڑھ پائیں گے. زیادہ تر پبلشرز کیا کرتے ہیں, ڈیجیٹل رائٹس مینجمنٹ کے انڈر سافٹ ویئر کا جو کنٹرول رہتا ہے وہ انہیں کے پاس رہتا ہے, تو اس سے ہمارے کبھی کبھی وہ ایکسس میں جو ہے لمیٹیشنز بھی ہو جاتی ہے کہ کتنے لوگ ایکسس کریں گے ایک بک کو, کب تک کریں گے, کتنے دن کریں گے, وہ سب پاورز ان کے پاس رہتی ہے. تو یہ تھوڑی سی چیزیں جو ہے جو الیکٹرانک بکس میں ہمیں نقصان بھی دیتی ہیں پر بہت سارے فائدے بھی ہیں. اب ایکسیسنگ یوزنگ ای بک, کیسے آپ ای بک تک پہنچ سکتے ہیں؟ ای بک جو ہے سب بہت سارے سپلائر سے ڈفرینٹ پبلشر جو ہے ہمیں سپلائی کرتے, ان کے پاس الگ الگ طرح کے ماڈلز ہوتے ہیں. اس ماڈل کو دیکھ کے آپ اپنی کنڈیشنز دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے, آپ کے یوزرز کو کیا سوٹ کرتا ہے. آپ تو ایک مڈل میں ہیں وہاں پر ٹرائنگل میں کہ آپ کا پبلشر اور کتاب اور اپنے یوزر کے بیچ میں ہے. آپ کو یہ سب دیکھنا ہے کہ کون سا پبلشر مجھے چوز کرنا اور کون سی بکس جو ہیں ہمارے لیے یوزفل رہیں گے. ڈفرینٹ سپلائرز کے پاس الگ الگ بزنس ماڈلز ہوتے ہیں جو مارکیٹ میں رہتے ہیں. ان سب ہی ماڈلز کو دیکھ کے آپشنز کو سلیکٹ کر کے جو بھی وینڈر ہوگا آپ کو جو ٹھیک لگے گا اس سے سلیکٹ کیا جاتا ہے. تو ان بکس کو ہم لوگ اپنی لائبریری میں لے سکتے ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں کئی سارے یوزرز ایک ساتھ اس بک کو پڑھ سکتے ہیں. کئی کئی باری یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ آپشن دے دیتے ہمیں, آپ ون یوزر کا لے لیتے ہیں تو اس کی کاسٹ تھوڑی کم ہوتی ہے, تھری کا لیتے ہیں, فائیو کا لیتے ہیں, یا این نمبر یوزرس آپ کو چاہیے تو اس کی کاسٹ تھوڑی تھوڑی بڑھ جاتی ہے. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے جب کوئی ایک کتاب کھول رہا ہے اگر میں نے ون یوزر لیا تو وہ دوسرے کو پڑھنے کو موقع نہیں ملے گا, اگر میں نے فائیو لیے تو پانچ لوگ تک وہ ایٹ اے ٹائم پڑھ سکتے ہیں, ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اگر این نمبر لیا جو یونیورسٹیز زیادہ تر کر سکتی ہیں, دے ہیو این اپ منی, تو کوئی بھی ڈاؤن لوڈ جب مرضی کرے تو ان کے پاس ہوتا. پر یہ زیادہ تر وہاں پر بھی آئی پی بیسڈ بھی رہتا ہے کیونکہ انہی کے ایک ایریا میں ہی ملے گا آپ کو, یا آئی ڈی پاسورڈ کے اس پہ ملے گا, ادروائز آپ کو ایکسس ہر سمے ہر جگہ نہیں ملتا ہے. کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جو ای بکس ہیں وہ کاپی رائٹس کا بھی ایک ایشو بن جاتے ہیں ڈیجیٹل رائٹس مینجمنٹ کے تحت. ان کا وہ سبھی کو پرنٹ نکالنے کو الاؤ نہیں کرتے ہیں. کبھی کبھی کیا کرتے ہیں وہ کسی بک میں سے وہ ایک ڈیمارکیشن کر دیتے ہیں کہ اتنے پرسنٹ ہی آپ پرنٹ نکال سکتے ہیں, یا وہ ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ بک کا وہ والا پارٹ آپ کبھی بھی اس کو سلیکٹ نہیں کر سکتے, اس میں سے آپ پرنٹ نہیں نکال سکتے. یا یہ بھی ہو جاتا ہے اگر آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لیا تو وہ پانچ دن دس دن کے اندر اندر آپ کا ختم ہو جائے گا, اس کو پبلشر نہیں کرنے دے گا ڈاؤن لوڈ. تو جیسے کہ ہم لوگ یوزلی دیکھتے ہیں کہ کتاب جیسے آفس مطلب کہیں سے ایشو کراتے ہیں اس کے بعد ہمیں وہ واپس بھی کرنی ہے, اسی طرح کا کچھ ان کا بھی مینجمنٹ رہتا ہے کہ جو جن طریقوں سے وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں. جیسے ادروائز ایک بک لے لیا اور سبھی نے پڑھ لیا تو ان کے لیے تو نقصان ہو جائے گا ڈیفینیٹلی. ہمیں جیسے جسے پائریسی کہتے ہیں, جیسے کہ موویز میں بھی ایسا ہوتا تھا, ایک مووی ہوئی اس کی کاپی کر لی, پرنٹ اچھا ہوا یا نہیں ہوا پر سبھی لوگوں نے دیکھ لی, تو جنہوں نے مووی بنائی ان کا نقصان تو ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. اسی طرح سے یہاں پر بھی جس نے بک لکھی ہے, جس نے پبلش کی ہے, جس نے ای پرنٹ نکالا اس کا, اگر وہ سبھی کو ایک ہی کاسٹ دے کر کے کر لے گا تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی ایک لاس ہو جاتا ہے. تو ان کو اپنے رائٹس کو بھی بچانا ہے اور ایک مڈل پاتھ پہ کام کرنا پڑتا ہے جس سے کہ لائبریریز کا بھی نقصان نہ ہو, یوزرز کا بھی نقصان نہ ہو. تو اس طرح سے ہم لوگ کام کرتے ہیں. انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی ایک بہت ہی ضروری امپورٹنٹ چیز ہے ان بکس کو ایکسس کرنے کے لیے, الیکٹرانک بکس کو. اور آپ کا جو ایکسپلورر ہے, کروم ہو, فائر فیکس ہو, یا انٹرنیٹ جو بھی ہے, وہ آپ کے پاس لیٹسٹ ہی رہنا چاہیے, تبھی یہ بکس آپ کو ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہیں. یوزلی زیادہ تر بکس جو ہے ای بکس پی ڈی ایف فائلز ہوتی ہیں, تو اس کے لیے آپ کو ایڈوب ایکروپریٹ ریڈر کی بھی ضرورت رہتی ہے, تبھی آپ بک کو ڈاؤن لوڈ کر پائیں گے, پڑھ پائیں گے. تو آپ کے پاس یا اگر دیکھا جائے کوئی نہ کوئی اکوپمنٹ ہونا چاہیے, چاہے آپ کنڈل لیں, اینڈرائڈ کوئی فون لیں, آئی فون لیں, کوبو لیں, ای بک ریڈر ہے, نک ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں. تو آپ کے پاس ایک اکوپمنٹ تو بہت ضروری ہے, جو ایک بیسک نیڈ ہے کتابوں کو ریڈ کرنے کے لیے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں یہ بھی ہے کہ جو بکس ہم خریدتے ہیں ای بکس کو, وہ کہاں پر ہوسٹ رہتی ہے, وہ تھرڈ پارٹی کی ویب سائٹ پر رہتی ہے. جہاں ہم जब क्लिक करते हैं इस बुक को, हम कहाँ पर पहुंचते हैं? हम उन्हीं की वेबसाइट पर पहुंचते हैं जो पब्लिशर होता है या एग्रीगेटर होता है, तो बुक हमेशा उनके पास रहती है। तो डाउनलोड का भी ऑप्शन जो भी है वो वहीं से वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि वो करने देंगे नहीं कर देंगे, या कितने दिन के बाद आपका जो है ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। आपने बुक डाउनलोड कर ली, वो फिर एक्सपायर भी हो सकती है। जैसे लाइक हम लोग बुक्स को इश्यू करके वापस करना पड़ता है, मतलब क्योंकि बुक वो लाइब्रेरी की होती है, इसी तरह से इसमें भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, ऑप्शंस हैं। तो कुछ एग्जांपल्स जो हैं ई बुक्स जो सप्लाई करते हैं, माय आई लाइब्रेरी है एक, ई लाइब्रेरी है एक, ईब्रे एब्सको है। एब्सको आप देख सकते हैं, अगर आप NIS की वेबसाइट पर जाएंगे, दीप एक ई लाइब्रेरी है, आप उसे एक्सप्लोर करोगे, उसमें हमारे पास एब्सको के डेटाबेसेस हैं, उनको देख सकते हो आप, उनको आराम से सर्च कर सकते हो, उसमें आप देखोगे एब्सको भी इसी तरह का एक एग्रीगेटर है जो काफ़ी सारे बुक्स को आर्टिकल्स को ले करके डेटाबेसेस बनाते हैं। इसी तरह से ये एग्जाम्पल्स हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज की जो ई लाइब्रेरी में आपको मिलते हैं, मगर देयर्स आर, ये सब पेमेंट पे है, इसमें कुछ भी फ्री नहीं है। कुछ ही बुक्स होती हैं जो आपको फ्री ई लाइब्रेरी करके मिल जाएंगी, वो अलग है, जो कभी कभी कॉपीराइट के एक्ट से निकल गई होती हैं, पुरानी हो गई होती हैं, डिजिटाइज होकर के उन्होंने रखी होती हैं। इस तरह से स्प्रिंजर भी एक पब्लिशर है जिसके पास लाखों में ई बुक्स हैं। वहाँ वो क्या करते हैं, कभी जब आप उनका परचेज करते हैं बुक्स, या तो वो परचेज करके हमें डेटाबेस दे देते हैं अपना, या अपना वो एक लिंक शेयर कर लेते हैं उसमें से, उसी लिंक पे आप जब करेंगे तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको बुक को डाउनलोड करने देगा। और इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल हैं। लाइब्रेरीज यूजुअली क्या करती हैं, एग्रीगेटर्स को या ऑनलाइन स्टोर्स को, अगर हमें सिंगल बुक खरीदनी है अमेज़ॉन से, हमें अगर खरीदनी है अपने लिए सिंगल बुक, हम खरीद सकते हैं। अगर आप स्प्रिंजर का जाना है के पास जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक डेटाबेस सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें कि उनके कितनी सारी भी बुक्स होती हैं, वही उसी के अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको लेनी है बुक्स या नहीं लेनी है। स्प्रिंजर के अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस भी है, जिसके पास बहुत सारे एकेडमिक मोनोग्राफ्स हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, मेडिसिन, लॉ, बहुत सारे जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर आपको मिलेंगे। पर यहाँ पर आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, वो है ऑक्सफोर्ड स्कॉलरशिप ऑनलाइन। इस पे सारे कलेक्शंस रहते हैं, ये अपडेट होता रहता है हर साल में, दो साल में इसकी अपडेशंस होती है। इसका हमने एक स्क्रीनशॉट भी आपको आपके चैप्टर में दिखाया हुआ है। ये सब लाइब्रेरीज के लिए, पर एक स्टूडेंट को जानने की ज़रूरत है ताकि वो कहाँ से पढ़ सकता है इस सबको। अगर लाइब्रेरीज में है और अगर आपको सिंगल बुक डॉक्यूमेंट खरीदना है, वो आप अमेज़ॉन पे जा सकते हैं, या उनकी जो मार्केट जहाँ से हो रही है ये वाली बुक्स, वहाँ से आप खरीद सकते हैं अपने लिए सिंगल। लाइब्रेरीज को यूजुअली पब्लिशर्स के पास ही जाना पड़ता है। एक है सफारी टेक्निकल बुक्स, इस पे भी बहुत सारी ई बुक्स हैं। इसमें ओवरऑल 100 पब्लिशर्स की जिस बुक्स को एग्रीगेट करके रखा हुआ है, और हो सकता मोर भी, मोर देन दैट हो। और इसकी जो स्पेशलाइजेशन है वो कंप्यूटर एप्लीकेशंस पे है और ट्रेनिंग मैनुअल्स पे है। इसको आप देखेंगे www.safaribooks.online.com, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी किताबें मिलेंगी। देखने को हो सकता है फ्री में डाउनलोड नहीं होंगी, जब आपके लाइब्रेरी या कोई परचेज कर रहा है या आपको एक्सेस मिल रहा है किसी लाइब्रेरी का, तो वहां से आप इन्हें देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें दिखती हैं, मिल जाती हैं, डाउनलोड होती है, पर पूरी तरह से नहीं होती। आप जैसे एक एब्स्ट्रैक्ट तक देख सकते हो जो कि 10-20 लाइंस का, 50 लाइन का होता है, वो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद अगर आप यू वांट टू परचेज आल्सो, तो आप इसे खरीद भी सकते हो इंडिविजुअली, लाइब्रेरीज को फुल फ्लेज्ड खरीदना पड़ता है। इसमें और जो बुक्स हैं, कैरी के नाम से है, फ्री बुक्स हैं, इंटरनेट क्लासेस आर्काइव है, इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी है, ऑनलाइन बुक्स पेज, ये सारे फ्री भी हैं। प्रोजेक्ट गुटनबर्ग है, यूसी प्रेस ई बुक कलेक्शन है, इन सब पे आपको बुक्स मिलेंगी। ये सब हमने आपको रेफरेंस के लिए दिए हुए हैं, ये आप फ्री देख सकते हो, और इनके एग्जांपल्स याद भी रखने हैं कि फ्री बुक्स कौन सी वेबसाइट पे मिल जाते हैं, या कौन सी बुक्स से हम परचेज कर सकते हैं, लाइब्रेरी किस से परचेज कर सकती। ज़्यादातर अगर आप देखोगे स्प्रिंजर के पास साइंस के ज़्यादा ہے، سیج کے پاس آرٹس کے ہیں، زیادہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے، یہ سب چیزیں تھوڑی بہت سمجھنے کی ہیں اور یاد بھی رکھنے کے لیے ہیں۔ ابھی تک یہ سوچا جاتا ہے کہ بہت جلدی، مطلب پرنٹڈ بکس کو آپ دیکھیں گے اتنی جلدی ریپلیس نہیں کر سکتے ہیں، ہاں مگر ضرورت کے حساب سے اب دیکھا گیا ہے کہ پرنٹڈ بکس کے اوپر الیکٹرانک بکس کو پڑھا جاتا ہے زیادہ، کیونکہ اب ہمارے پاس اکوپمنٹس ہیں، ہاتھ میں فون رہتا ہے تو ہم ہمیشہ اسے دیکھ سکتے ہیں، مگر اس میں یہ ایک ضروری بات ہے کہ دیکھا جائے تو جیسے ریسرچرس ہیں یا فیکلٹی ممبرس ہیں جن کو ایک دم لیٹسٹ انفارمیشن کی ضرورت پڑتی ہے، یا کوئی آرٹیکل لکھ رہا ہے، وہ الیکٹرانک ورژن کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، کیونکہ ان کو وہ والی لیٹسٹ انفارمیشن جو ہے، اپڈیٹیڈ انفارمیشن جو ہے، اوتھینٹک بھی ہے، جو اوتھینٹک ویب سائٹ سے آپ لیتے ہیں وہ ساری انفارمیشن آپ کو وہاں پر ملتی ہے، اس میں ہمیں بہت پرانی نہیں ملتی ہے۔ یا آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو جلدی سے جلدی بک جو پرنٹ ہونے سے پہلے ہی جو بک ای ورژن میں آ جاتی ہے، تو اس لیے وہاں پر آپ زیادہ پڑھنا پسند کریں گے، اور مور سو اس میں کیا ہے کہ آپ کو بک کو اینڈ ٹو اینڈ پڑھنا نہیں ہے، آپ نے کی ورڈ ڈالا، جو آپ کے انٹرسٹ کا چیزیں ہیں اسی لوکیشن پہ آپ کو بک لے جائے گی، اسی لوکیشن سے آپ پڑھ لیں گے، اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ نے ایبسٹریکٹ کو دیکھ لیا، آپ سمجھ گئے ہاں یہ ای بک میرے لیے صحیح ہے، تو کور ٹو کور پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ ایک تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے اس میں کہ آپ کو سرچنگ بہت ایزی ہو جاتی ہے، فزیکل بک میں سرچ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، جیسے ہم کمپیوٹر پہ فائنڈ کر لیتے ہیں، فٹافٹ ڈال دیتے ہیں اور وہ ہمیں وہیں پر لے جاتا ہے جو ہم نے ڈالا ہے، تو وہ فزیکل بک میں وہ چیزیں نہیں ہیں پاسبل، الیکٹرانک بک میں ڈیفینیٹلی وہ ساری چیزیں پاسبل ہیں۔ تو اب ہم جو دوسری بات، نیکسٹ جو ہمارے پاس کیٹیگری ہے وہ ہے الیکٹرانک ڈیٹا بیسز کی۔ الیکٹرانک ڈیٹا بیسز میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یوزولی پبلشرس ہی کیا کرتے ہیں، وہ لوگ بکس کو، ای بکس کو بھی، جرنلز کو بھی، آرٹیکلز کو بھی، جو لیٹسٹ ہیں یا پرانے ہیں، ان سب کا وہ ایک ڈیٹا بیس بنا لیتے ہیں۔ انہی میں جہاں ہمیں بکس خالی ای بکس ایک ایک کر کے بھی ملتی ہے، یہاں ہمیں یہ ڈیٹا بیس ایز اٹ از پورا پرچیز کرنا پڑتا ہے۔ پہلے جب ہمارے پاس انٹرنیٹ کی اتنی سویدھا نہیں تھی یا کلیکشن نہیں تھا ہمارے پاس، اب تو کلاؤڈ پہ کلیکشن ہو جاتا ہے سبھی کا، اسپیس کا کوئی ایشو نہیں ہے الیکٹرانکلی، تب ہم سی ڈی رومس میں بھی رکھتے تھے، پین ڈرائیوز میں بھی ملتی تھی، سی ڈی رومس میں بھی ملتا تھا، یا انڈیویجولی بھی ہم سیو کر کے رکھتے تھے۔ اس میں دو طرح کے ڈیٹا بیسز ہیں، ایک ہے بیبلیوگرافک یا پھر فل ٹیکسٹ ہے۔ ان دونوں میں طرح کے ڈیٹا بیسز کو جو انڈیویجولز یا ایگریگیٹر ہوگا یا جو بھی پبلشر ہوگا وہ تیار کر کے رکھتا ہے، اور وہ فل ڈیٹا بیس کو ہی بیچتے ہیں۔ تو بیبلیوگرافک ڈیٹا بیسز کے بارے میں ہم ابھی بات کریں گے۔ بیبلیوگرافک ڈیٹا بیسز کیا ہے؟ یہ بیبلیوگرافک ریکارڈس رکھ لیتا ہے، خالی ریکارڈس کو ہی، ڈیجیٹائزڈ انفارمیشن ریفرنس پرپز کے لیے رکھتا ہے۔ یہ ڈیجیٹل کلیکشن آف ریفرنس ٹو پبلش لٹریچر، کون سا لٹریچر پبلش ہو رہا ہے اس کا ایک ڈیجیٹائز ہم ریفرنس لٹریچر بنا لیتے ہیں۔ اس کا جیسے ایک ایگزامپل ہے، ایک پرٹیکولر سبجیکٹ ایریا بھی ہوتا، کبھی کبھی کامن سبجیکٹس بھی ہوتے ہیں، جیسے ہم جے گیٹ پہ جاتے ہیں، جے گیٹ انفارمیشن انڈیا ڈاٹ کو ڈاٹ ان ہے، یہ بیبلیوگرافک ڈیٹا بیس ہے جس میں انہوں نے انڈیکس کیے ہوئے ہیں بہت سارے ہزاروں جرنلز، کس میں سے، ہزاروں پبلشر سے، جیسے کہ ہمارے پاس 10,000 پبلشر ہیں، ان میں سے اس ڈیٹا بیس میں کتنے جرنلز آئے ہیں، 10,000 20,000 الگ سے وہ ان کو، یا 2,000 ان جرنلز کو الگ کیا ہوا ہے، ان جرنلز کے لنکس بھی ملتے ہیں آپ کو، جہاں سے آپ اس کو کچھ فی دے کے، جیسے کہ میں بتا رہی تھی آپ کو کنسورشیا پہ زیادہ تر جے گیٹ اور یہ سب کی انفارمیشن اکٹھی لی جاتی ہے، ان ڈیٹا بیس کو اکٹھا خریدتے ہیں، وہ یونیورسٹیز خریدتی ہیں یا بڑے بڑے جو انسٹیٹیوشنس ہیں وہ خریدتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو اگر ون آرٹیکل کے لیے آپ کو کوئی پسند آ رہا ہے، جس کو آپ نے دیکھ لیا، جس کا آپ نے سائٹیشن چیک کر لی اور آپ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ اس کا ایبسٹریکٹ پڑھ لیا، تو آپ اسے لینا چاہتے ہیں، تو ایک منیمم فی ہوتی ہے جس کے انڈر آپ اس کو پے کر کے آپ اسے دیکھ سکتے، آتھر، پبلشر، ٹائٹل، سبجیکٹ، یا آپ کا سورس सोर्स ऑफ पब्लिकेशन क्या है, डेट क्या है, ये सभी कुछ आपको इस पे अवेलेबल हो जाता है. मेजॉरिटी जो है डेटाबेसिस वो हमें एब्स्ट्रैक्ट और साइटेशंस दिखाते हैं, जिससे कि हम लोगों को बहुत सारे, जैसे सेकेंडरी लेवल पे अगर हम आगे जाकर के यहाँ देखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट्स में से हमने बहुत केयरफुली पढ़ा देखा कि हमें क्या चाहिए और आगे फुल आर्टिकल हमें किस चीज़ के लिए पे करना है, हम किस फुल आर्टिकल पे अपना टाइम लगाना चाहते हैं, वो हमें यहाँ पर आने के बाद पता चल जाता है. क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट जो है बहुत आराम से पब्लिशर, जो रिसर्चर होता है, जो जानना चाहता है, लिख रहा है, वो अपना कंपैरिजन करके बहुत सारी चीज़ों के साथ, बहुत सारे वॉल्यूमनस जो लिटरेचर अवेलेबल है उसमें से आप इतना सारा लिटरेचर एकदम से पढ़ नहीं सकते. तो इस तरह का बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस जो है वो आपको बहुत हेल्प कर देता है आगे आप कौन सा आर्टिकल, कौन सा बुक क्या पढ़ना चाहते हैं आप उसमें जा सकते हैं. इसमें हमने एक एग्जांपल दिया आपको, cabi.org है, ये भी आप देख सकते हैं. करंट कंटेंट्स करके भी है, करंट कंटेंट्स में भी आप देखेंगे साइंस से रिलेटेड आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो आप पढ़ना चाहेंगे या अपने इंटरेस्ट से देखेंगे, तो वो आपको वहाँ तक लेके जाता है. इसके बाद हम फुल टेक्स्ट डेटाबेसिस की बात करेंगे. फुल टेक्स्ट डेटाबेसिस में क्या है, इसमें आपको आर्टिकल्स, बुक चैप्टर्स, कॉन्फ्रेंस पेपर्स, ये सब पूरे फुल टेक्स्ट में मिल जाते हैं. जैसे साइंस डायरेक्ट है या जे स्टोर है या प्रोक्वेस्ट है, इसकी एग्जांपल्स हैं जो फुल टेक्स्ट देते हैं. फुल टेक्स्ट का मतलब है यूजर्स जो हैं वो अपने इस टेक्स्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, फुल आर्टिकल को आप सेव कर सकते हैं, इसका प्रिंट निकाल सकते हैं. ये ज़्यादातर PDF या HTML फॉर्मेट में है, आप इसे अपना सेव करके रख सकते हैं. तो इसमें हमें फुल टेक्स्ट में क्या हमें फ़ायदा होता है कि जो टाइम यूजर का है, जो उसको आर्टिकल वहां से उन्होंने देख लिया, यहां पर आपको आराम से मिल गया, तो आर्टिकल पढ़ने में आसानी हो जाती है, आप इजीली उसे लोकेट कर पाते हैं. यूजर्स की एक्सपेक्टेशंस जो हैं फुल टेक्स्ट आर्टिकल तक पहुंचने, क्योंकि सेकेंडरी सोर्सेज से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तभी जैसे सेकेंडरी सोर्सेज में हमें बिब्लियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन मिल गई, ये आर्टिकल है, ये पब्लिशर है और इन्होंने छापा है और ये डेट है, टाइम है और सोर्स कहाँ का है, ये सब पता चलने के बाद आप अपने प्राइमरी आर्टिकल पर जा सकते हैं जहाँ आप इसे पढ़ना चाहते हैं. तो दैट वे ये हमें हेल्पफुल रहता है. इसी तरह से हम इसके क्वेश्चंस अगर देखेंगे इसमें, तो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस क्या है, डेटाबेस को समझना ज़रूरी है. इलेक्ट्रॉनिक बुक अलग तरह की है, वो खाली किताबों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा, या इलेक्ट्रॉनिक जर्नल जो है, ई जर्नल्स, वो आपको जर्नल्स ही बताएगा. मगर डेटाबेस ओवरऑल एक कॉम्बिनेशन है. अगर आपको इसको अच्छे से देखना है, समझना है, आप ज़रूर रहना है इसकी वेबसाइट पर जाके, डीप पे क्लिक कीजिए, वहां पर आप डेटाबेसिस में जाइए. आप जब डेटाबेसिस में जाएंगे, डेटाबेस में आप देखोगे हमारे पास एप्सको के डेटाबेसिस हैं, हमारे पास नॉटनल के हिंदी के डेटाबेसिस हैं, आप उनको आराम से क्लिक करके देख सकते हैं. आप देखेंगे वैरायटी ऑफ मटेरियल जो है उन्होंने उसे ई फॉर्मेट में कंटेंट बना के उस पर अपलोड किया हुआ है, आप सर्च करके आराम से उसे ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं. अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन उस पर आपको एक जगह पे मिल जाती है. उसमें एक में 5,000 डॉक्यूमेंट्स हैं, एक में हजारों हैं. आप अगर एक खोलते हैं तो उसके बीच, उसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं. देन यू कीप ऑन गोइंग, अंदर जाते रहेंगे, जितनी जितनी आपको डीप इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उतना ही उसको सर्च कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं. वो एक डेटाबेस की बहुत अच्छी एग्जाम्पल है जो हम अपने स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को दे सकते हैं. क्योंकि ये ओपन एक्सेस है, आपको पासवर्ड और आईडी की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा हमारी वेबसाइट पर जाकर के आराम से इसे देख सकते हैं. फिर ई रिपोर्ट्स हैं. ई रिपोर्ट्स यूजुअली आप देखेंगे किसी भी वेबसाइट पर जाओ, ये ज़्यादातर आपको आप ई रिपोर्ट्स ही मिलेंगे. इसमें आपको ग्राफिक्स भी या टेबुलर फॉर्म में मिलती हैं, सारी आपकी अपनी इंस्टीट्यूशन की इन्फॉर्मेशन होती है. कभी कभी ये रेगुलरली निकलता, हर साल में निकलेगा, हर 6 महीने में निकलेगा, या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी रिपोर्ट्स की बहुत ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा जल्दी जल्दी अपनी पीरियडिसिटी रखते हैं. तो इसको आप यूजुअली पब्लिक तक पहुंचाने के लिए आप अपलोड करते हैं अपनी वेबसाइट पे, वहां देखते हैं. आप अगर NIS की वेबसाइट पे जाएंगे या किसी भी DU की वेबसाइट पे जाइए, JNU की वेबसाइट पे जाइए, आप वहां देखेंगे एनुअल रिपोर्ट्स रखी होंगी, हर साल की है. जहां से NIS बना है जबकि तब अगर नहीं भी होगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उसको डिजिटाइज करके रखा जाता है। हर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही करती है, अपने अपनी रिपोर्ट्स को वहां पर अवेलेबल करती है, ताकि अगर आप कुछ जानना चाहते हैं NIST के बारे में, कैसे शुरू हुआ, कहाँ से आया, तो आप वहां पर देख सकते हैं। और इनकी आउटपुट क्या है, कितने स्टूडेंट्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल, ये सारी जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है क्यूमुलेटिव इकट्ठी की गई होती है सारे डिपार्टमेंट्स की, वो अलग अलग 12-15 चैप्टर्स में वहां पर आपको मिल जाती है। इसी तरह से आप देखेंगे प्लानिंग कमीशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वो पब्लिश करती हैं रिपोर्ट्स को, देखेंगे आप एनुअल रिपोर्ट्स उनकी भी छपती हैं और वो आपको मिलेंगी। उसका स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पर दिखाया है आपको, वो इंडिया की वेबसाइट, वो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर के आप इसे चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सारी एनुअल रिपोर्ट्स, हर तरह की रिपोर्ट आपको वहां पर मिलेंगी। फिर है थीसिस और डिजर्टेशंस। ई थीसिस और डिजर्टेशंस का क्या है, डिजर्टेशन और थीसिस आपको मालूम ही है, अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो हमारे पास डिजर्टेशन होता है, और अगर हम PhD कर रहे हैं तो थीसिस जमा करानी पड़ती है। पहले हम लोग जिस तरह का रिसर्च करते थे, जैसे भी रिसर्च ख़त्म हो जाती थी उसका एक डॉक्यूमेंट बन जाता था, उस डॉक्यूमेंट को हम देख के सबमिट करते थे, उसकी कई कॉपीज़ बनती थी, एक लाइब्रेरी में रहेगी, एक आपके गाइड के पास जाएगी, एक आपके जहाँ इंस्टीट्यूशन है वहाँ रहेगी, इस तरह से 5-6 कॉपीज़ बना के देते। मगर अब ऐसा है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही देनी पड़ती, आपको ई थीसिस ही सबमिट करनी पड़ती, डिसर्टेशन हो या थीसिस हो आप इसे सबमिट करते हैं विथ फिजिकल कॉपी, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉपी होती है। पहले हम CDs में देते थे, अब सीधा ही हम मेल कर सकते हैं, वो भी अपने जहाँ पर भी ऑर्गेनाइजेशन का ई रिसोर्सेज का स्पेस होगा वहाँ इसे अपलोड कर देते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ये डिजर्टेशन और थीसिस का एक रिपोजिटरी कहाँ, डिजिटल रिपोजिटरी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर की है, जिसकी स्क्रीनशॉट हमने आपको दिखाई हुई है। शोध गंगा है, @Infimnet सेंटर, ये सारे स्टूडेंट्स की PhD थीसिस आप देखेंगे। यूनिवर्सिटी न्यूज़ एक जर्नल है, आप उसमें देखोगे उसमें पीछे बाद लास्ट के पेजेस में कितनी PhD सबमिट हुई हैं उन सब की लिस्ट आ जाती है। तो यही आपको Infimnet जो है UGC का है कंसोर्शियम, वहाँ पर आप देखेंगे ये सारे वहाँ पर अपलोडेड होते हैं, वहाँ पर दिखते हैं आपको। अगर आपको एक्सेस मिलता है वहाँ का तो आप डेफिनेटली उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या रिसर्च हुई है आज तक। और अगर हम आगे की कोई रिसर्च करना चाहते हैं आपको करंट टॉपिक्स भी मिल जाते हैं उस पर देखने को, पढ़ने को, अंडरस्टैंड करने को। वहाँ पर सभी थीसिस जो भी सबमिट हुई होती है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की, सारी थीसिस की वहाँ पर रिकॉर्ड आती है। विद्या निधि इंडियन डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थीसिस है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर की है, यहाँ पर भी आपको एक्सेस मिलता है डिजिटल थीसिस का। इसके बाद है हमारा इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज। इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज हम उस तरह की रिपोजिटरी बनाते हैं, जैसे कि अगर हम ये कहें कि 20 साल पहले तो डिजिटाइज नहीं था कुछ भी, या हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कोई भी बुक नहीं थी, NIST की जो हमारे यूजर्स हैं, लर्नर्स हैं, उनकी कोई भी किताब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में नहीं थी, हम टाइप करते थे पहले और टाइप करके छपती थी किताब, पर अब ऐसा नहीं है। और अगर है भी तो हम उन बुक्स को क्या करते हैं, उनको स्कैन करके, उनको डिजिटाइज करके अपनी एक रिपोजिटरी बनाते हैं, या एक उसका मेटाडाटा भी क्रिएट होता है उसका, जिससे वो सर्चिंग भी कर देता है उस डॉक्यूमेंट के मेटाडाटा में, ऑथर, टाइटल, उसका लिंक जहां से आपको वो लेता है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, वो सभी कुछ हो करके हम उसे अपलोड कराते हैं अपनी अपनी वेबसाइट्स पे। तो आपको इस तरह से जैसे NIST को कोई भी डॉक्यूमेंट किसी को चाहिए, अभी हम एनुअल रिपोर्ट्स की बात कर रहे थे, अभी तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेशन में है, अगर हमारे पास पुरानी वाली रिपोर्ट्स हैं जिन्हें हमने डिजिटाइज दोबारा किया, स्कैन किया, उनको हमने अपलोड किया, कंप्रेस करके वो फाइल्स को अपलोड करते हैं, छोटा बनाते हैं उन्हें, और उनका मेटा डेटा भी अपलोड करते हैं, ताकि अगर आपको सर्च करना है 2007 का आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, हमारे यहाँ से प्रॉस्पेक्ट्स में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप जब सर्च करेंगे आप अपने हिसाब से जब आप कीवर्ड डालेंगे वो आपको सर्च करके भी दे देगा। इस तरह सारे इंस्टीट्यूशंस जो है, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस अपनी इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी बनाते हैं, उस रिपोजिटरी में आपसे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वो उसके साथ रहते हैं। जैसे कि हमारे पास ई लाइब्रेरी हो, इसी तरह से इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी होती है। यहाँ पर हमने जो एक एग्जांपल आपको दिया है वो है आपको ई प्रिंट्स का। @IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिसने अपने रिपोजिटरी का स्क्रीनशॉट दिया है हमने. वहाँ पर डिफरेंट थीसिस, डिजर्टेशंस हैं, इनका डेटाबेस भी है और उनकी सारी जो भी अगर आपके यहाँ स्टूडेंट्स काम करते हैं तो उनसे रिलेटेड, या आपका जो अपना स्टाफ है वो अगर कुछ एकेडमिक्स से रिलेटेड काम करते हैं, कुछ उनका कोई आर्टिकल छपा है, वो भी आप चाहेंगे कि वो आपके इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट पे आ जाए, वो आपके इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी में आ जाए. उस तरह से आपका जो एकेडमिक आउटपुट होती है, इंटेलिजेंट यूज़ हुआ होता है, रिसर्च यूज़ हुई होती है, वो सारी आपको इस रिपोजिटरी में ऐड करने से फ़ायदा रहता है. क्योंकि आपके सारे इंस्टीट्यूशंस ने जो भी काम किया है, कोई रिसर्च की है, कोई पर्टिकुलर चीज़ छापी है, वो आपको इसमें मिल जाएगी. तो इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज भी काफी यूजफुल होती हैं. तो इस तरह से हमारा ये वाला लेसन खत्म कर लिया हमने इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज को. होप आपको समझ आ गया होगा ई बुक्स क्या है, ई जर्नल्स क्या है, डेटाबेसिस क्या है, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज क्या है. थैंक यू.